भगवद गीता यथारु अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 9। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणमेव च अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानु उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आंख जीभ नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। क्यों? श्री बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि हमने पिछले श्लोक में सीखा कि जिस प्रकार से वायु गंध को लेकर चलती है, इसी प्रकार से व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को धारण लेकर के चलता है और उसके बाद उसको एक स्थूल शरीर उसके सूक्ष्म शरीर के अनुसार प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि और इंद्रिय, मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब इस नवे श्लोक में वो कह रहे हैं, प्रश्न उठाते हैं कि किस उद्देश्य से एक जीव अपनी इंद्रियों को लेकर के दूसरे शरीर में जाता है, क्या उद्देश्य है, क्यों एक विशिष्ट प्रकार के आंख नाक कान त्वचा और जीभ को लेकर के वह अगले शरीर में जाता है। समझ लेना चाहिए इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, विशिष्ट का अर्थ क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुरे कार्य करता है तो उसका मन बहुत विकृत हो जाता है, तमोगुण से प्रभावित हो जाता है, तो उसको अब अगले जीवन में सुअर बनना है। तो अब वह सुअर की ही चेतना को लेकर के ढोते हुए, उस चेतना को ढोते हुए सुअर का शरीर धारण करेगा और उसकी इंद्रियां इस प्रकार की होंगी कि वह मल खा सके। अब जिसने सतोगुण की वृत्ति का अनुशीलन किया है, सतोगुणी रहा है, तो वह व्यक्ति देवता के कोटि का हो जाता है और देवता के अनुसार उसकी इंद्रियां उसको मिलती हैं और देवताओं को उपलब्ध भोगों को प्राप्त करता है। तो हमने ये सीखा कि जो पहले मतलब ये सीख रहे हैं कि जिस प्रकार की हम कार्य करते हैं उस प्रकार से हमारी चेतना का निर्माण होता है और उस प्रकार से हमें अगला स्थूल शरीर प्राप्त होता है जो इस समय सूक्ष्म शरीर के या मन बुद्धि अहंकार के शरीर के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पे श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो इंद्रिय जैसे मान लीजिए कान है या आंखें हैं जो उसको अगले शरीर में मिलती हैं और वैसा मन मिलता है, उसी प्रकार से जीव उन विषयों का भोग करता है। जैसे देखिए मल खाने की इच्छा किसी इंसान में नहीं होगी, लेकिन सुअर के शरीर में उस निम्न चेतना की जो जीवात्मा है उस समय उसको ये स्वाभाविक लगेगा कि मल खाना ही जीवन की सर्व सर्व उपलब्धि है। तो इस प्रकार से जीव का मन और इंद्रिया एक विशेष प्रकार के शरीर के अनुसार हो जाता है और इस प्रकार से जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन कर रही है। तो वह इंद्रियों को स्वीकार करता है ताकि विशिष्ट प्रकार के इंद्रिय विषयों का उपभोग कर सके। अर्थात फिर समझाऊंगा कि अगर मल खाना है तो उस प्रकार की इंद्रिय उस प्रकार की उसको मन की मन का या चेतना का निर्माण होना चाहिए। यहां पे शब्द है च और च से समझ लेना चाहिए कि कर्मेंद्रियां भी अर्थात हाथ पैर बोलने की शक्ति जननेन्द्रिय गुदा इत्यादि और पांच जो हमारे प्राण हैं प्राण अपान उदान व्यान समान यह सब भी च शब्द से इंगित होता है। तो यानी कि इन पांच ज्ञानेंद्रियों को जिनके द्वारा हम अपने मन में ज्ञान का इनपुट लेते हैं, इनके साथ साथ व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार की कर्मेंद्रियां भी प्राप्त होती हैं जिसके द्वारा वह कर्म करके अपने तथाकथित विषयों का उपभोग कर सके। मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आंख नाक आंख घ्राण शक्ति घ्राण मतलब सूंघने की क्षमता चखने की क्षमता स्पर्श करने की क्षमता सुनने की क्षमता इसके द्वारा व्यक्ति को ज्ञान होता है और उस ज्ञान के आधार पर वो कर्म करता है। तो वो कर्म करने के लिए भी जो कर्मेंद्रियां हैं वह उसी शरीर के अनुसार होती हैं जैसा उस व्यक्ति ने चेतना का निर्माण किया है, और इस प्रकार से जीव इनकी शरण लेकर के विषयों का भोग करता है। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपने चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बताता है, लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो, वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर तात्पर्य है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। इस समय अगर व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है तो वो तमोगुणी कार्य करेगा और उससे और अधिक तमोगुण का प्रकटीकरण उसके चित्त में हो जाएगा, और बढ़ जाएगा उसका तमोगुण। उसी प्रकार से अगर रजगुण से प्रभावित है तो उसके चित्त में और रजगुण बढ़ जाएगा, और अगर सतगुण है और सतगुण से प्रभावित है और सतगुणी क्रिया कर रहा है तो सतगुण और बढ़ेगा। और अगर वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो वो इस प्रकार का जीवन जिएगा ताकि वो गुणों का संग करे ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। तो इस प्रकार से अपनी अपनी चेतना के अनुसार और अपने अपने संग के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घोर तमगुणी भी है लेकिन भक्तों का संग करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा तो क्रमशः तमगुण रजगुण से मुक्त होकर सतगुण में स्थित होगा और फिर शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेगा। तो सब कुछ परिवर्तनशील है, इस पर निर्भर करता है कि हमारा संग क्या है। लेकिन अगर हमारा संग ठीक नहीं है, भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो प्रायः लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं जैसा कि उन्हें पिछले जन्मों में प्राप्त है, और पिछले जन्मों के प्राप्त संस्कार के अनुसार या स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता जाता है और वो स्वभाव और गहरा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए घोर स्वभाव का है, क्रूर स्वभाव का है, तो इस जगत में अगर उसे ज्ञान प्राप्त न हो, भक्तों का संग प्राप्त न हो, तो वो और क्रूरता के कार्यों में लगेगा और उस क्रूरता के कार्यों के कारण उसकी क्रूरता और बढ़ जाएगी। तो वस्तुतः देखेंगे कि जीव की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसे भगवान के भक्तों से संग प्राप्त ना हो और उनसे वो भगवान के बारे में सुनने का लाभ ना उठाए। तो जब तक भगवान के भक्तों से सुनेगा नहीं तब तक वह क्या करना है और क्या नहीं करना है वो समझ नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए अभी हमें मंदिर के पुजारी बता रहे थे कि शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति मंगलवार और बृहस्पतिवार को सर छिलाता है, मतलब बाल छिलाता है, तो उसकी उम्र 11 महीने कम हो जाती है, पूरे जीवन की आयु वधि 11 महीने खत्म हो जाती है। तो हम कहेंगे अरे ये तो बकवास है, हम कह सकते हैं, लेकिन शास्त्र की बात एकदम काट है, बिल्कुल सच होती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसका एक्सपेरिमेंट करने के बजाय शास्त्र के अनुसार चलेगा और शास्त्र की बात सुनकर के अपने जीवन में लाभ उठाएगा। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि ये बात जब मैंने सुनी तो अब मैं सचेत हो गया कि मुझे कब बाल छिलवाना है, कब नहीं छिलवाना है। तो इसी प्रकार से क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह शास्त्र की विधि को सुन करके व्यक्ति को सीखना चाहिए। तब वह ऐसी वो सीख पाएगा कि ऐसी चेतना का निर्माण करें जिससे व्यक्ति भगवत धाम जा सके। अन्यथा हम इंद्रियों का ही विषयों का भोग करते करते एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना रोक नहीं सकते कभी। अब अगर ऐसा हो रहा है, अब ये तो हर किसी के संग हो रहा है, हर व्यक्ति अपना शरीर परिवर्तन कर रहा है, फिर नए शरीर धारण कर रहा है, तो लोग देख क्यों नहीं पाते और कौन लोग हैं जो देख पाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग श्लोक क्रमांक 10 में करेंगे। हरे कृष्ण।